وكرتين إن شاء الله بنا ريفيو سيشن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. جی، ہم لوگ کتاب الصیام کو انشاء اللہ تعالیٰ ریویو میں آج مکمل کریں گے. اس میں اعتکاف کا بھی انشاء اللہ آگے آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم کتاب الصلاح پہ چلے جائیں گے، جس پہ ہم جہاں سے رمضان سے پہلے کر رہے تھے. انشاء اللہ تعالیٰ آپ نکال لیجئے. امید ہے کہ آپ لوگ نوٹس لیتے ہوں گے، کیونکہ جو لوگ نوٹس نہیں لیتے ان کو بہت جلدی یہ باتیں سب بھول جائیں گے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی چلے ناظرین، آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. یہ بتائیں ایام تشریق کون کون. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
ایام تشریق جو عید الاضحیٰ کے بعد جو تین دن ہوتے ہیں، 11, 12, 13.
شاباش. عید الاضحیٰ کے بعد جو تین دن ہوتے ہیں، 11, 12 اور 13. تو عید الاضحیٰ ملا کے تو یہ کیا کتنے دن بن گئے؟ 4 دن. اور ان 4 دنوں میں پھر روزہ نہیں رکھ سکتی، یعنی عید الاضحیٰ پہ بھی نہیں رکھنا، اور ان 3 دنوں میں آگے ایام تشریق میں بھی نہیں رکھنا. اور کون کون سے دنوں میں روزہ نہیں رکھنا؟
اور دوسری عید الفطر والے دن.
عید الفطر والے دن، یعنی سال بھر میں یہ وہ روزے ہیں جن کے رکھنے کی صرف یہ نہیں ہے کہ اگر رکھ لیں تو کوئی بات نہیں اور نہ رکھیں تو ایسا نہیں ہے. یہ نہ رکھنا اس کا حکم ہے، ان کی ممانعت ہے ان کے رکھنے کی. اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ان دنوں میں روزے کو چھوڑنا وہ بھی ایک اللہ کے حکم کی تابے داری ہے. اللہ کے حکم کو آپ مان رہے ہیں جب آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں ان دنوں میں، چاہے اس وقت کوئی بھی دن آ جائے، پیر اور جمعرات آ جائے یا کچھ آ جائے، لیکن تب بھی آپ نے روزہ چھوڑنا ہے ان دنوں میں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہما غنی آپ بتائیں گی کہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، بھول کے کھا لینے ہیں، اس سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
جو ہے فقہ کے نزدیک جو ہے نہیں ہوتا،
تو یعنی اگر کوئی بھول جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھول کے اگر کوئی کھا رہا ہے ہمارے
روزہ کنٹینیو رکھے، روزہ اپنا جاری رکھے.
نہیں، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟
ہم نے اس کو منع نہیں کرنا.
اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اللہ کرے ہم اس پہ عمل کرنے والے بھی ہوں، کیونکہ ہم جب بچے دیکھتے ہیں کہ روزے میں بھول کے بےچارے خاص طور پہ شروع شروع میں روزے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ ان کو بھول جاتا ہے، کچھ کھا رہے ہوتے ہیں تو اتنا شور اور چیخو پکار شروع جاتی ہے کہ ہو تمہارا روزہ، تمہارا روزہ تھا، اور پھر وہ تھوکنے پہ اس کو مجبور کر دیتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اس حدیث پہ اس طرح سے عمل بھی کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کھلا رہا ہے تو آپ نے اس کو منع نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ. خاص طور پہ آپ دیکھیں شروع شروع میں روزوں میں اچھے بھلے بڑے لوگ بھی بھول جاتے ہیں، تو بچے خاص طور پہ جو نئے نئے روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو تو جلدی بھول جاتا ہے، تو ہم اپنا فرض منصب ہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو نہ یاد کرایا تو پتہ نہیں ہم گناہگار ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اچھا جی، رافیہ بیگم آپ بتائیں گی کہ صوم الدہر کون سا ہے؟ صوم الدہر کیا ہے؟ جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
کیا تھا آپ نے سوال؟
صوم الدہر کون سا ہے؟
دہر.
اچھا، کوئی
نہیں، ساری کلاسز لی تو ہے لیکن پتہ نہیں مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا ہے.
کوئی بات نہیں، اب آپ سنیے گا کہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، پھر نوٹ کر لیں اس کو انشاءاللہ. یہ کلثوم آپ بتائیں صوم الدہر کون سا ہے؟
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
یہ جو مسلسل روزہ رکھنے کا ہے یہ نا،
ٹھیک ہے، مسلسل روزہ رکھنا
منع کیا گیا ہے اس سے نا، مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے تو اس کو صوم الدہر کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ تحسین آپ مجھے بتائیں صوم وصال اور صوم الدہر میں کیا فرق ہے؟ जी सौ में विशाल में और सौ में दहर में क्या फर्क है?
जी सौ में विशाल तो उसे कहते हैं जो करती है, मतलब इफ्तार के बगैर उस रोजे को जारी रखना, फर्ज के बगैर एक रोजे से दूसरे रोजे को मिला लेना, सॉरी इफ्तार तो होगी लेकिन एक रोजे से दूसरे रोजे को मिला लेना, जो खास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। और सौ में दहर जो है वो एवरी डे रोजा रखना, यानी कि रोजाना, मतलब जिस तरह से हमारे आम रोजे होते हैं लेकिन एवरी डे रोजा रखना।
ठीक है, सही है, शाबाश। अच्छा अब आप राशिदा आप बताएंगे कि सौमे दहर का क्या हुक्म है? जी वालेकुम
सौमे दहर ममनू किया गया, उस सलसले में मना किया गया है कि तुम्हारे आँख का भी पर हक है और तुम्हारी अजवाइश का भी तुम पर हक है, इसलिए आप ये दाऊदी वाला रोजा रखे ना
जी।
सौमे दाऊदी,
ठीक है, लेकिन सौम दहर के बारे में क्या फरमाया गया, क्या बताया गया कि ये कैसा है, अगर कोई रख ले तो क्या है, उसके बारे में खास तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ तुम्हारी आंख का भी हक है और तुम्हारे और
याद नहीं है खास बात, पता है किस तरह, लेकिन मैं लिखने से भूल गई हूं।
अच्छा जी ठीक है, फिर अब आप सुनिएगा शाजिया नासिर, आप बताएंगी। जी शाजिया नासिर उसका कोई रोजा ही नहीं है। ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि देखें जो इंसान रोजाना 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 रोजा मुसलसल रोजा रखता रहे तो फिर वो इंसान ऐसे ही है जैसे उसने कोई रोजा रखा ही नहीं, यानी वो यानी बगैर यानी उसका मेदा उसकी ये सब इतने आदि हो चुके हैं कि अब वो ऐसे ही है कि उसका रोजा है ही नहीं। तो इस तरह से हमें मना किया गया कोई ऐसा ना रखे रोजा। अच्छा ये बताएंगे नसरीन आबिद के क्या फर्ज रोजों के लिए ये या फिर ये नफली रोजों के लिए? यानी आप मुसलसल रोजा रख रहे हैं तो ये मेरे मिसलन मेरे महीने भर के रोजे छूट गए थे, मिसाल के तौर पे मैं वो रखना चाह रही हूँ, तो क्या वो भी कंटिन्यूसली नहीं रख सकते या ये नफली रोजों के बारे में?
नहीं, ये जो छोटे रोजे वो तो रख सकते हैं, यानी पूरा साल मुसलसल नहीं रख सकते ना, जैसे आप बाद लोग रखते हैं दो तीन वीक के रख लेते हैं तो वो रख सकते हैं।
जी शाबाश, यानी नफली रोजे के बारे में
अब कहते हैं कि के रोजे जो है तो उसका एक रोजे का 10 गुना सवाब है, तो क्या जुमेरात और पीर का भी उसका भी है? ये ना सिर्फ उनका देवी जो निबंध नहीं कर,
कोई भी आप रोजा रखेंगे कोई भी नेक अमल है देखें 10 गुना उसका अजर है ना। अच्छा देखें आप ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की कि ये नहीं कि आप लोगों को अब मना करना शुरू कर देने नहीं तुम मुसलसल रोजे ही नहीं रख सकते, ये है कि मुसलसल रोजे रखना नफली रोजे रखने के बारे में है। फर्ज रोजे अगर मसलन खुदा ना खास्ता किसी के पूरे महीने के रह गए और वो पूरा महीना रोजा रख लेता है तो कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर, वो तो जाहिर है एक एक नंबर ऑफ रोजे होंगे ना, वो भी ऐसे थोड़ी होंगे कि हजारों रोजे उसने रखने हैं। इसीलिए ये बात फिर देखें लास्ट टाइम हो भी गई थी कि जब पता ही नहीं है अमाउंट तो ऐसे ही रोजे रखते चले जाना रखते चले जाना, वो कोई समझ में आने वाली बात नहीं है, तो पता हो तो फिर इंसान उन रोजों को कंप्लीट करने के लिए मुसलसल भी रख सकता है, क्योंकि जाहिर है रमजान में भी हम देखें मुसलसल ही रखते हैं ना, एक भी नहीं छोड़ते, तो इसलिए ये जो कहा गया वो नफली रोजे, जैसे लोगों को कहीं कोई शौक होता है माशाल्लाह रोजा रखने का, अब वो रोजा रखते चले जाते हैं और फिर एक भी रोजा छोड़ना नहीं चाहते, उनकी जिंदगी का मामूल ही ऐसा हो जाता है, तो याद रखिए ऐसा रोजा कोई रोजा नहीं होता। ठीक है, अब कोई मसलन 15 साल रोजे रखना ही शुरू हो जाए, कहे कि मैं 15 साल से मुसलसल रोजे में, तो वो तो उसका स्टमक ही आदि हो गया इस चीज का, तो उसने सहरी को समझ लेना नाश्ता और इफ्तारी को शाम का खाना समझ लेना, तो वो कोई रोजा नहीं है। ठीक है, ऐसे रोजे रखने से परहेज करना चाहिए। अच्छा अगर हम जैसे मसलन सर्दियां आती हैं तो हम नफली रोजे रखना, अब हम मुसलसल रोजे रख रहे होते हैं जैसे 20 रख लिया पूरा महीना रोजा रख लिया क्योंकि छोटे छोटे दिन है तो हम कहते हैं चलो अब फिर से फायदा उठाएं, तो क्या ये भी नहीं रखने चाहिए? सबाहत आप बताएंगे।
जी नहीं, नफली रोजे नहीं रखने चाहिए।
अच्छा नहीं,
एक महीने नहीं रखने चाहिए, एक दिन छोड़ के,
एक दिन छोड़ के एक दिन। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हमारे छोटे दिन आ रहे हैं और हम सोचते हैं चलो ये मैं इस हफ्ते पूरा रोजा रख लेती हूँ, तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है इसके अंदर। मसलन ऐसे है कि हमेशा ही इस चीज की आदत बना लेना वो सही नहीं है, मगर जैसे अब मैं कहूँ कि भाई ये इतने छोटे दिन है, अब चलो ये इतने छोटे दिन अगर नफल रोजा रख लेते हैं हम इसके अंदर, तो रख सकते हैं आप 2-4 दिन के रख सकते हैं, हफ्ते के रख लिया आपने। और आपको अगर ये नियत है, खास तौर पे उन लोगों के लिए मैं कहना चाह रही हूँ जिनको ये नियत हो कि पता नहीं अब मेरे जो फर्ज रोजे छूटे थे ना उनकी मुझे कोई तादाद मालूम है ना कुछ है, तो अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे ये नफली रोजे उसकी जगह पे यानी काउंट हो जाए, तो वो उन लोगों को वैसे ही कसरत से रोजे रखने चाहिए। और ये जैसे सीजन में अब आपने कोई एक हफ्ता रोजा रख लिया तो कोई ऐसा वो नहीं है, मगर मुसलसल ना इसको आदत बना ले। अच्छा, जहां तक शाबान के रोजों की बात है, शाबान के रोजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रखा करते थे, राहत आप बताएंगे?
अस्सलाम वालेकुम। शाबान के रोजे रमजान से आने से पहले एंड पे वो नहीं रखते थे, उन्होंने मना फरमाया क्योंकि आगे रमजान के रोजे आने इसकी ताकत खत्म।
सही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का कैसा मामूल था, यानी तो हमारे लिए
रमजान में रखते थे शाबान के रोजे के, मतलब उनको कह लो कि हुक्म था, लेकिन एंड पे मना करते थे कि एंड पे मतलब आखिरी रमजान से 2 दिन पहले रखने का उन्होंने मना फरमाया।
सही, ठीक है, वो हमें मना फरमा दिया। और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जैसे यहाँ पे आता है कि आप देखें हदीस नंबर 712 देखेंगे, यहाँ पे आता है कि पूरे दिनों के रोजे रखते थे शाबान में, पूरे दिनों के रोजे 712 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के पूरे दिनों में रोजा रखते थे, तो इसका फिर क्या मतलब हुआ? तैयबा आप बताएंगी
जी, इसका मतलब है कि जो है बहुत ज्यादा कसरत रखते थे, ये मतलब नहीं कि बिल्कुल पूरे महीने की रखते थे, बहुत
कसरत से। ठीक है, शाबाश, यानी पूरे दिनों का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा रोजे रखते थे इसके अंदर, और यानी तकरीबन पूरा महीना ही जैसे कोई रोजे रख ले इस तरह से हो जाता था आपका मामूल। लेकिन हमें कहा गया कि एंड में हम इतने इसलिए कि हमारी ताकत ना खत्म हो जाए, ये ना इतना ही थक जाए कि जो असल फर्ज है वो ही सही तरह अदा ना हो सके, इसलिए एंड में आप रोजा छोड़ दें। नफले रोजों में भी एक इतदाल होना चाहिए। अच्छा, ये बात इसी से कयास करके हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि बाकी भी तमाम इबादात में इसी तरह, चाहे हज है, हज में भी आप ऐसा ना करें कि इतनी इबादत कर ली कि जब, क्योंकि हम पहले से पहुंच जाते हैं कि पहले से जाके बहुत जोश व खरोश भी बड़ा होता है, तो बड़ा बहुत किया, उसके बाद जब असल हज के दिन शुरू हुए तो वैसे ही बीमार पड़ गए, तो असल तो आप वहां पे आए ना, तो फर्ज याद रखें, हमेशा फर्ज मुकद्दम होगा, फर्ज हमेशा मोर इम्पोर्टेंस रखता है नवाफिल से। इसी तरह अगर मैं रात को नमाज पढ़ती रहूं, बहुत मैंने तहज्जुद पढ़ रही हूँ ये करें, और जब फजर का टाइम आया तो अब मुझे यह कि मैं तहज्जुद पढ़ ली है तो अब कोई बात नहीं है, फजर लेट भी करके पढ़ लूंगी, फजर रह भी गई तो कजा पढ़ लूंगी, अब तो मुझे इतनी नींद आ रही। भाई इस तरह इत्तदाल रखें कि ये ना हो कि आपकी फराइज मुतासिर हो। इससे हमें ये सबक मिलता है कि फराइज को हमने ज्यादा अहमियत देनी है। ठीक है, अच्छा जी, और कौन है? अच्छा इरम, आप बताएंगी कि किस किस्म का अमल इख्तियार करने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया?
अस्सलाम
वालेकुम वरहमतुल्लाहि
वबरकातुह।
यानी हमें ये सबक दिया गया है कि चाहे अमल थोड़ा उसमें हमेशगी हो, हमेशा उसको करते रहना, मुसलसल उसको करते रहना, ऐसा नहीं हो कि आप बीच में छोड़ दें और फिर उसके बाद बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि हम लोग असल में ना बहुत जज्बाती, एज अ नेशन ही हम बहुत जज्बाती लोग हैं, बहुत ज़्यादा हम इमोशनल हो जाते हैं, तो जब हमें जोश आता है तो हम इतना ज़्यादा करने बैठ जाते हैं और जब फिर जोश जरा ठंडा पड़ जाता है तो सब कुछ ही छोड़ देते हैं, कोई चीज हम कंटिन्यू नहीं रखते। तो अगर आज तहज्जुद के ऊपर कोई बहुत अच्छा लेक्चर सुन लेंगे, बहुत कर लेंगे, तो हफ्ता भर तो हमारी तहज्जुद ऐसी होगी कि बस जैसे सारी जिंदगी नहीं छोड़ी, और उसके बाद जब छोड़ने लगेंगे तो फिर कभी दोबारा पढ़ेंगे ही। इसलिए इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि वो अमल करें जो आप मुसलसल जारी रख सकें। अब आपने अगर मसलन कह दी मैंने तो मन्नत मान ली है, मैं बस हर पीर और जुमेरात या हर रोज रोजा रखूंगी या आट करके फिर छोड़ दें, उतना अमल करें जिसको कंटिन्यू करें स्टेप पे जाएं कि नहीं अब मेरा ये अमल इतना हद तक हो भी छोड़ दिया तो कभी फिर याद आ गया कभी जिंदगी में, तो ये नहीं अच्छी बात होती। ठीक है, कैसा होता है सोम? शबनम खान आप बताएंगे। वालेकुम अस्सलाम, उसके बारे में क्या है? दहर रख ले, हमें सारी वक्त रोजे में रहे, महीनों महीनों गुजर रहे हैं रोजे। सुभान अल्लाह, हमारा दीन कितना इतदाल वाला दीन है, यानी एक्सट्रीमिज्म इबादत में भी नहीं किया गया। हम तो जब जरा सी किसी को बात देखते हैं तो कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट है, वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। एक्सट्रीमिज्म ये ना, तो ये एक पसंदीदा बात नहीं समझी गई है। और हम जब किसी की बात बयान करते हैं तो हम कहते हैं फलां अल्लाह देखो जी वो 10 साल से उन्होंने कभी रोजा छोड़ा ही नहीं, हमेशा रोजे रखते रहे, और पता नहीं कितने सालों से उन्होंने कभी पूरी रात ईशा की नमाज पढ़ी और उसी से फजर पड़ी, और कभी उन्होंने बीच में यानी सोए ही नहीं कभी। तो ये कोई अच्छी बातें नहीं, इसको पसंद नहीं किया गया। ठीक है, ये पसंदीदा चीजें नहीं। इबादत में भी क्या इत्तेदाल, बैलेंस। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी इबादत देखें कितनी बैलेंस थी ना।
अरे मम्मा
जी
मम्मा,
किसी का फोन म्यूट नहीं हुआ हुआ जी, म्यूट करते हैं अगर जिनका फोन नहीं म्यूट हुआ। अच्छा राबिया सिद्दीकी आप बताएंगे कि कुरान करीम को कितने दिन में खत्म करना अफजल है?
वैसे तो आम लोगों के लिए तीस बारे में वैसे ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो एक हफ्ते में खत्म करने का।
शाबाश, यानी आप वैसे तो इसीलिए 30 पारे इसी तरह से डिवाइड किए गए हैं कि 30 डेज में आपके 30 पारे मुकम्मल हो जाए, एक महीने में आप आराम से खत्म कर लें। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं मैंने बहुत ही जल्दी खत्म करना है, मुझे बहुत ही ज्यादा शौक है खत्म करने का, तो 7 दिन में खत्म करें, इससे कम में ना करें। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ताकी थी। देखें सहाबा का तो बहुत ज्यादा तकवा और उनकी इबादत का जो शौक था ना वो बहुत ज्यादा था, लेकिन उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं इजाजत दी कि हर रोज एक कुरान खत्म कर लिया करो। समझ रहे हैं आप बात? हालांकि वो तैयार थे करने को, वो कह रहे थे और ये कोई क्या बुरी बात है, कुरान पढ़ने से मना किया क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नहीं, इत्तदाल इत्तदाल, तुम थक जाओगे लेकिन अल्लाह ताला नहीं थकता सवाब देते हुए, तुम इतना ही रखो जितना कि तुम फिर मुसलसल कर सको, ये बात है, उतना ही काम करो। अच्छा एक बात मुझे आपसे पूछनी है, क्योंकि ये सवाल मेरे से किसी ने पूछा था कि मसलन किसी की एक रात आंख खुल गई, अब वो चाहती है कि चलो मैं उठ के 2 नफल पढ़ लूं। वैसे वो कभी पढ़ती नहीं है, लेकिन वो आज रात बस आंख खुली है तो वो सोच रही है चलो मैं पढ़ लेती हूँ। तो आप मुझे पहले टॉक पे इसी पे जवाब दें कि क्या उनका नफल पढ़ना बेहतर है या वो ना पढ़े इसलिए कि वो तो कंटिन्यू कर ही नहीं सकती, क्या नफल पढ़ना बेहतर है? यस बताएं इस पे, या फिर नहीं पढ़ना बेहतर? पढ़ना भी था, लेकिन वो तो कंटिन्यू नहीं कर सकती। वो कहती अब देखिए मैंने तो ये हदीस सुन ली है कि जो अमल करो फिर मुसलसल करो, तो फिर मैं तो मुसलसल नहीं कर सकती। तो फिर क्या करें? शाबाश, आपने उन्हें बिल्कुल सही बताया, उनको पढ़ लेना चाहिए। ये उसके लिए है कि मसल मुसलसल कोई इबादत करता रहा फिर उसके बाद उसने छोड़ दी बिल्कुल। ये नहीं कि अब आप एक दिन भी अगर आपकी अल्लाह ने आंख खुलवा दिया कि अंदर हिम्मत है, आज आप कह रहे हैं मुझे नींद आ ही नहीं रही, अब मैं सिर्फ इसलिए ना उठूंगी जी फिर मैं मुझे मुसलसल तो मैं कर नहीं सकती, तो इसलिए वो कहने लगी इसलिए मैं छोड़ ही देती हूँ क्योंकि मुसलसल नहीं कर सकती। देखो अल्लाह अकबर, देखो कैसे शैतान इंसान को बहकाता है। नहीं, एक दिन की इबादत से भी जाने दिया, तो अगर एक दिन भी कर सकते हैं कोई मसला नहीं है, आज की तौफीक मिल गई आज ही कर लो। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि अल्लाह ताला आगे कंटिन्यू करने की तौफीक अता फरमा दे, और हो सकता है अगर नहीं भी कंटिन्यू किया तो आज की इबादत का अजर तो मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए अब इस सोच के साथ ये ना हो कि कोई भी कोई अमल छोड़ दे, क्या नहीं मैं तो मुसलसल थोड़ी, मैं इसको हमेशा थोड़ी इसको सदका दे सकती हूँ, अब मैं एक दफा भी ना दूं क्योंकि अगर एक दफा दे दिया तो फिर से मुसलसल मुझे देना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं करना, ये आपको समझ आ रही ना, तसलसल किस में चाहिए। अच्छा, फिर हम देखते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम का कयाम कैसा होता था, कयाम में वो कैसे कयाम करते थे। सिद्दीकी, आप बताएंगे कि दाऊद अलैहिस्सलाम कैसे कयाम किया करते थे।
शुरू के हाथ थोड़ा सा छोटे थे, फिर
जी
उठ के नमाज पढ़ते थे, रोजा
सही, फिर उठ के नमाज पढ़ते थे।
एक रखते थे, एक
सही। और ज्यादा कोई इसको बताएगा? राजी, आप बताएंगे और ज्यादा इसको स्पेसिफिक करके। जी अच्छा, अब देखें बाकी लोग क्यों नहीं आए, फिर ये 732-635 से जो है वो कौन है बताएंगी जरा। 635 जी, 732-63। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी।
बताऊं
जी, जी बताइए। अच्छा
को सबसे ज्यादा उन्होंने फरमाया कि सब नमाजों में अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा नमाज जो है दाऊद अलैहिस्सलाम की थी, क्योंकि वो आधी रात तक सोते थे, उसके बाद तहाई रात को उठ के तो नमाज पढ़ते थे, फिर रात के छठे हिस्से में फिर सो जाते थे।
शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी है। दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे आधी रात तक सोते थे, उसके बाद तहाई रात नमाज पढ़ने में गुजारते थे, फिर रात का 1/6 हिस्सा सो जाते थे। यानी पहला जो देखिए सुभान अल्लाह, अब साइंस भी बताती है हमें कि ये जो रात का मिडनाइट से पहले का टाइम होता है, इस टाइम में जो सोना है वो बहुत अच्छा है। उस टाइम में जितना आपकी बॉडी रिकवर करती है उतना किसी और टाइम में नहीं करती। जिन लोगों को ये आते हैं कि वो 12-1 बजे सोते हैं, उन्होंने वो टाइम गुजार दिया जिसमें सबसे ज्यादा आपकी बॉडी रिकवरी करती, फिर उसके बाद आप सो भी जाएंगे लेकिन आप थके हुए रहेंगे। इसीलिए जो आप शुरू का हिस्सा सोते हैं रात का, ईशा के बाद अगर इंसान सो जाए मिडनाइट तक, उसकी मुसलसल एक नींद हो, तो वो नींद बाद में कई घंटे सोने के भी वो उस तरह से पूरा नहीं हो सकता जैसे शुरू की रात में सोना। तो जो लेट नाइट सोने वाले हैं उनको अपनी इस आदत को बदलना चाहिए। वो टाइम बहुत ज्यादा आपकी बॉडी को रेस्ट दे देता है। उस 1 घंटे में सोना बाकी 2 घंटे या पता नहीं कितना है उतने घंटे सोने से ज्यादा बेहतर उस 1 घंटे में सोना, ये अब साइंस ने बताया। वो देखें सुभान अल्लाह, दाऊद अलैहिस्सलाम के नमाज का तरीका ऐसे ही था कि शुरू का जो हाफ ऑफ द नाइट थी वो सो जाते थे, शुरू से ही नहीं लेके शुरू कर देते थे इबादत। हाफ ऑफ द नाइट पहले वो सोते थे, उसके बाद फिर उठते थे। 1/3 नाइट अपनी इबादत कर उठना मुश्किल, और उठे में है तो फिर सोना मुश्किल। यानी जब सोना भी है तो आधी रात गुजार के सोना है, और अब सोए हैं तो फिर उठने को ही नहीं हिम्मत हो रही, तो वो इसीलिए हिम्मत नहीं हो रही होती क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हुई होती, हमारी बॉडी अभी तक भी एक यानी थकी थकी महसूस करती है क्योंकि हमने फर्स्ट जो हाफ ऑफ द नाइट है वो वैसे ही हमने गुजार दिया। ठीक है, इसलिए इस चीज को जहन में रखिए कितना ये। अब आप लोग ये 720 हदीस नंबर देख लें, 720 اور اس حدیث کے مطابق آپ پھر انشاءاللہ تعالی اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی رات کو ڈیوائیڈ کریں گے اور کیسے آپ اس کے اندر عبادت کا اپنا سکیجول بنائیں گے. اگر ایسے کر لیں تو یہ سب سے پسندیدہ ہے. اور دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے کہ پوری رات انہوں نے عبادت کی, یاد رکھیں یہ بات. پوری رات عبادت کا, یہ جو لوگ فخریہ اس طرح سے بولتے ہیں نا, پوری رات عبادت کرنا اور پوری رات مسلسل ایوری نائٹ عبادت کرتے رہتے ہیں یا فلاں, یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے یا یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. ہمارے مذہب میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. سارا دن سوتے رہو, رات کو جی ہم عبادت بہت کرتے ہیں, یہ کوئی اچھی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب کس کی باری رہ گئی ہے؟ سمیہ اختر. چلو سمیہ اختر, آپ بتائیں کہ شب قدر کو کن راتوں میں تلاش کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے؟
شب قدر تاک راتوں میں, 23, 25, 27 اور
یعنی آخر کی تاک راتوں میں, جو آخری دس
راتوں کی تاک راتوں میں,
بالکل آخری دس راتوں میں بھی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا بتایا گیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا, اور اس خواب میں آپ کو کیا بتایا گیا تھا؟ اچھا یہاں پہ ٹاپ پہ لکھ دیں, اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور نیا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ جسے میں پوچھوں. اچھا نفیسہ آپ بتائیں گے. ہاں جی جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس خواب سے کیا شب قدر کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے؟
جی انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ میں رات کو کیچڑ اور پانی میں جیسے سجدہ کر رہا ہوں نا.
اچھا
تو جس دن 21ویں رات تھی شب قدر, مطلب 21ویں رات تھی شابہ رمضان کی, تو اس دن پھر بارش شروع ہو گئی تھی اور جو سجدہ کر رہے تھے پانی میں اور نیچے زمین پر مٹی تھی, تو جب انہوں نے سر اٹھایا تو چہرہ مبارک پہ مطلب مٹی لگی ہوئی تھی.
ٹھیک ہے شاباش. یعنی آپ یہ اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 21ویں شب بھی ہو سکتی ہے لیلۃ القدر. تو کیا اسے کنفرم ہے کہ 21ویں ہے؟ نہیں, رین سائن نہیں ہے. ضروری نہیں کہ رین ہو, ان یوزل رین بھی سائن نہیں ہے. کیا ضروری ہے؟ تو پھر اسے کیا پتا چلتا ہے؟ جی بالکل, کیونکہ اس دفعہ کسی نے میرے سے پوچھا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ بھائی یعنی ہر سال کوئی تاریخ بھی ہو سکتی, تو یہ پھر کیسے کوئی بھی تاریخ ہو سکتی؟ تو دیکھیں اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ یہ دیکھو بھائی 21ویں ہے اور میں نے خواب میں بھی ایسے دیکھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سچے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو 21ویں ہی کنفرم ہو گئی پھر تو. تو جب وہ کنفرم نہیں ہے, اس کے بعد تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال فرمایا کہ دیکھو پچھلے سال 21ویں تھی تو اب اس سال بھی 21ویں ہے. اٹ مینس کہ وہ ریوالو کرتی ہے, اٹ مینس کہ ہر سال ڈفرینٹ تاریخ ہو سکتی ہے جس میں کہ فرشتے اترتے ہیں, جو اس کی عبادت ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اب لوگ اس میں کنفیوژ ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ قرآن تو اترا تھا لیلۃ القدر میں, تو قرآن ہر سال ڈفرینٹ راتوں میں اترتا تھا. ایسی بات نہیں ہے, وہ جس رات قرآن اترا تھا وہ لیلۃ القدر تھی. ٹھیک ہے, تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا, کیونکہ کوئی شاید کنفیوز ہو گئی تھی اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں. تو اس کا مطلب اس وقت 21ویں رات تھی, 21ویں بھی ہو سکتی ہے, 23ویں بھی ہو سکتی ہے, 25ویں بھی, 27ویں بھی اور 29ویں بھی. اب اس کے بعد آپ کیا کہیں گے کہ جو ہمارے کیلنڈرز میں ہیں, اللہ اکبر, جو کم علم لوگ ہیں انہوں نے 27ویں کے آگے لکھا ہوتا لیلۃ القدر اور باقاعدہ مسجدوں میں اعلان ہو رہا تھا جی آج لیلۃ القدر ہے, یہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کس کو کیسے پتا چل گیا لیلۃ القدر کا, جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں ایک سال میں دکھایا گیا اور اس کے بعد پھر اس سال میں 21ویں تھی, 27ویں تو اس سال میں بھی نہیں تھی. تو یہ کتنی حماقت ہے, اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اور لوگ باقاعدہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر اس دفعہ نا فلاں دن میں آ رہی ہے, یہاں لیلۃ القدر کے لیے ہم پھر مسجد جائیں گے. او اللہ کے بندو, لیلۃ القدر نہیں, 27ویں کہہ سکتے ہو, ہم اس کے لیے جا سکتے ہیں لیکن لیلۃ القدر تو نہیں کہہ سکتے ہیں. کس نے آپ کو کنفرم کیا اور بتایا؟ اور اسی اس میں ہم پھر اللہ نہ کرے لوز کر دیں لیلۃ القدر کو, کیونکہ ہمارا فوکس بس 27ویں ہوتا ہے, और फोकस और कोई रात होता ही नहीं है, अगर 27वीं आएगी तो हम इबादत करेंगे, 27वीं के अलावा हमने इबादत ही नहीं करनी। ठीक है, तो इस बात को जहन नशीन करें कि ये कोई भी रात हो सकती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में अगर 21वीं हुई थी तो 21वीं भी हो सकती, तो हम 27वीं कोई मार्क करके नहीं बैठे रहे। सही है। अच्छा जी, अब और कौन है? नहीं, मैंने सवाल पूछा। फरजाना चौधरी, आप बताएंगे कि इतकाफ का माना क्या होता है?
वालेकुम
अस्सलाम।
इतकाफ का मतलब है रुकना ठहरना, खास तौर पे ये मसले हराम में ठहरने के लिए है, लेकिन इतकाफ जैसे कि रुकना और ठहरना मस्जिद में है।
अच्छा, रुकना और ठहरना मस्जिद के अंदर, शाबाश। अकाफा से है ना, और जम के किसी जगह पे बैठ जाना। अब वो जम के बैठना जो होता है वो, यानी ऐसा नहीं है कि अब कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी उधर जाके गपशप कर रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं, क्योंकि बाज दफा मस्जिद में भी इतकाफ, आपने देखा ही होगा कि बस इतकाफ कम और गपशप का वो ज्यादा बन जाता है। मतलब कई जगह पे मैंने देखा कि वो इतकाफ की उनको शायद समझ ही नहीं है कि इतकाफ क्या होता है। आप इतकाफ, अच्छा अब कोई रह गया जिससे मैंने सवाल नहीं किया हो? यहाँ पे मुझे बताएं अगर कोई रह गया तो। जी अच्छा, चले अब मैं आपसे टॉप पे ही पूछ लेती हूँ। इतकाफ के लिए ये जो खेमे लगाए जाते हैं या पर्दे लगाए जाते हैं मस्जिदों में और उनके अंदर जाके लोग बैठते हैं, तो ये क्या सुन्नत से साबित है या कोई बिदत है? ये सुन्नत से साबित है? ठीक है, शाबाश। हाँ जी बिल्कुल, सुन्नत से साबित है ये, और इसी तरह लगाना बिल्कुल दुरुस्त है, लगाने चाहिए। अब इस मसलन है कि किसी ने इतकाफ बैठना हो तो कब वो अपने खैमे में दाखिल होगा, खैमे में कब दाखिल होगा? जी अब उसके ऊपर भी हम अभी आते हैं। खैमे में कब कोई दाखिल होगा? आफ्टर मगरिब ऑफ ऑड नाइट। ऑड नाइट तो बहुत सारी हैं। शाबाश। 21वीं रात पूरी गुजारेगा मस्जिद में, और 21वीं की जो फजर होगी, फजर पढ़ के, यानी आज 21st रोजा है, सोचे आज 21st रोजा है, तो आज की फजर पढ़ के उसके बाद फिर वो खैमे में दाखिल होगा, 22nd को नहीं। ठीक है, आपको पता है ना, पहले रात आती है फिर उसके बाद उसका दिन होता है, तो रात तो पहले ही शुरू हो जाती है ना। ठीक है, अब जो है ना 20th है, मसलन आज 20th है, तो आज की जो मगरिब होगी, ये मगरिब के बाद मस्जिद चले जाएंगे, मगरिब यानी मस्जिद में अदा करें। अच्छा, अब सारी रात मस्जिद में गुजारी, अब रात गुजार के अब दिन कौन सा है ये, अब 21st का, अब 21st की फजर पढ़ के मस्जिद में, और उसके बाद फिर आप एक खैमे में दाखिल हो जाते। खैमे में दाखिल होने का भी एक वक्त है, मस्जिद में दाखिल होना खैमे में दाखिल होना नहीं है, दो डिफरेंट चीजें। ये बात सबको समझ आ गई है? फजर के बाद, मगरिब के बाद, फजर के बाद। जी बिल्कुल, आप मस्जिद के अंदर तो रात गुजारी आपने, अगर खैमे में नहीं दाखिल हुए, खैमे में जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि फजर पढ़ के फिर दाखिल हुए। आप जहां तक ये सवाल आया कि आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज जो थी, उन्होंने खेमे लगाए मस्जिद के अंदर, सबसे पहले एक जौजा मुहतरमा हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने अपना खेमा लगाया, उसके बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने लगाया, उसके बाद हज़रत ज़ैनब बिनते जहश ने लगाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं पसंद किया इस बात को? खैमे लगाने आपको अच्छे नहीं लगे थे? क्या मसला था कि जिस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को पसंद नहीं फरमाया? फितना क्या इसमें फितना था? शाबाश, गुड राजिया, वेरी गुड। यानी वो एक दूसरे से कंपटीशन में लगा रही थी, सवाब नहीं था, कंपटीशन कि बस उसने लगाया तो उसकी देखा देखिए अब मैं भी यही करूं। जैसे बाज दफा नेकियां जो होती है ना, ये नेकियां किसी काम की नहीं होती, जिसके अंदर बस देखा देखी, वो जो कर रही है तो मैं भी करके देखूं, अब मैं भी ऐसा करूं, उसमें कोई नेकी पाना, सवाब पाना, अजर लेना, ऐसा कोई मोटिव ये नहीं होता। मोटिव क्या होता है, बस उसने जो किया तो मैं भी करके दिखाऊं। कंप्लीट इस तरह से नहीं, कंप्लीट नेकी में भी जब आप करते हैं तो अजर के हसूल के लिए करते हैं, देखा देखी नहीं, ये वो करे तो मैं भी करूं, अच्छा वो ना करती तो फिर आपको तो कोई भी नहीं था ना इस तरह की बात जहन के अंदर। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि मसलन मैंने कोई नेकी करते हुए किसी को देखा, मुझे भी ख्याल आ गया हाँ वाकई चलो मैं भी रोजा रख लेती हूँ, पर ऐसा नहीं कि उसने रखा है तो मैं भी अब रखू, जैसे होता है ना सौकनों में या देवरानी जिठानी हो गई या नंद भावज हो गई या इस तरह से कुछ हो गया तो अच्छा वो कर रही है ना मैं भी अब करती हूँ इस तरह का, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, सारा आपकी नियत के ऊपर डिपेंड करता है ना। हालांकि देखिए कितना नेक अमल है, तो काफी करने बैठी थी ना, कौन सा वो कोई नमाज छोड़ रही थी, कोई कोई और दूसरे और मशगलों में थी, इबादत की इंटेंशन से ही बैठी थी ना। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि इनकी इंटेंशन सवाब नहीं है, इनकी इंटेंशन एक दूसरे की देखा देखी, वो जो बैठी है तो मैं क्यों ना बैठू, इसी तरह वो जो कुरान पढ़ा रही ना तो मैं क्यों ना शुरू करा दू उसके कॉम्पिटिशन में, ये शुरू कर दिया, वो जो ऐसे कर रही है तो मैं क्यों ना। हालांकि आपके पास पहले भी अपॉर्चुनिटी थी, आपको पहले भी सारे वेन्यूज पता थे, मगर आपने उस वक्त नहीं किया, अब इसकी देखा देखी तो जी उस साल फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कजा किया था। अच्छा वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतकाफ कब कब बैठते थे, कब कब अपनी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतकाफ बैठे जी, सिर्फ अजर की नियत हो, कंपटीशन में भी अजर की नियत, फस्तबिकुल खैरात तो है, सबकत ले जाओ नेकियों में, सबकत ये नहीं कि एक दूसरे के जिद में सबकत ले जाओ कि उसकी जिद में मैं भी अब करूं। रमजान में नहीं, इतकाफ तो रमजान में किया वो तो सही है, मगर किन दिनों में किया ये मैं पूछना चाह रही हूँ। फर्स्ट नाइट्स में भी किया रमजान की, और मिड में भी किया रमजान की, और फर्स्ट टेन, सेकंड टेन, थर्ड टेन, शाबाश ज्यादा सेकंड टेन, अच्छा। और आखिरी अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में या आखिरी सालों में कब किया जी, बिल्कुल देन लेटर लास्ट जो है, जो थर्ड टेन है, बिल्कुल लास्ट अशरे में किया, जब जिंदगी के इख्तिताम की तरफ थे उस वक्त इन दस में किया, और इसी को फिर जारी रखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इसको नहीं छोड़ा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखें, हमेशगी वाला अमल होता था, और इस साल इनकी वजह से, इन औरतों की वजह से, ऐसे करने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठ के चले गए, एतकाफ छोड़ दिया। अच्छा एतकाफ छोड़ना होता है, इंसान ने उसकी नियत कर चुका हो कि मैंने 10 दिनों का एतकाफ करना है और नियत हो चुकी है, अब उसके बाद छोड़ा अगर तो फिर उसको कजा करना पड़ेगा, तो उसको कजा किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद शव्वाल के अशरे में, ठीक है। अब ये हदीस ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी जिंदगी में हमें नेकी करने के बारे में भी सही डायरेक्शन बताती है। ये जो उम्महातुल मोमिनीन का खैमे लगाना है एक दूसरे की जिद में, ये खैमे लगाना है वहां पे, अब इंटेंशन इबादत से ज्यादा एक दूसरे से मुकाबलेबाजियों की है, ठीक है। तो अगर हाँ किसी का ऐसे कोई हो जाए, मसलन फॉर एग्जांपल अल्लाह माफ करे, कोई इतकाफ में बैठा इस कदर बीमार हो गया कि उसको इतकाफ अपना छोड़ना पड़ा, तो फिर वो शव्वाल में अपने इतकाफ को फिर पूरा कर ले, ठीक है। अच्छा फिर आप ये देखते हैं आखिरी जो हदीस इसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान में आखिरी अशरे में अपने घर वालों के साथ क्या करते थे, घर वालों के साथ आपका क्या रमजान के आखिरी अशरे में था जी, उनको जगाया करते थे। आप ये देखें इससे ये भी पता चलता है कि सारा साल भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते थे, लेकिन उनको नहीं जगाते थे कि उठो और तहज्जुद पढ़ो, उठो और तहज्जुद पढ़ो, उनके पीछे पड़ जाना, ऐसे नहीं करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कम पे राजी हो जाते थे, ठीक है, लोगों से کم عمل کے راضی ہو جاتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے لوگوں کو کہ لوگوں جیسے ابو بکر صدیق ہیں ویسے ہی سارے صحابہ کو ہونا چاہیے. صحابہ میں بھی درجات تھے, تمام صحابہ ابو بکر صدیق نہیں تھے, تمام صحابہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے. صحابہ میں دیکھا نا آپ نے کیسے رینکس تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کم عمل پہ بھی راضی ہو جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ان کو جگایا کرتے تھے. ہاں اپنے گھر والے خود بھی جاگتے تھے اور فیملی کو بھی جگاتے تھے. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اگر رمضان میں ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو آخری عشرے میں جگاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک سنت کو پورا کرنا ہے, ان کو اس چیز کی ترغیب اگر ہم دیتے ہیں جاگنے کی, موٹیویٹ کرتے ہیں ان کو, ایسی باتیں بتاتے ہیں فضیلت کی جس سے وہ شوق ان کا بڑھ جائے ان راتوں میں جاگنے کا, اور جاگنے کے لیے ان کو مدد کرتے ہیں, تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم پوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن کثیرا. سر کے کچھ پرابلم ہو گئی ہے انٹرنیٹ میں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک آ نہیں پا رہے, تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم اپنا کتاب الصلاہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو مسئلے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں ان پہ خود بھی عمل کر سکیں اور دوسروں تک بھی ان کو پہنچا سکیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.